वह तभी हमारे अंदर वो घुसता है जब हमारे हृदय में क्या हो, श्रद्धा हो। श्रद्धा दो चीजों के प्रति हो तभी वो विषय हमारे हृदय में प्रवेश करता है। एक है जो वक्ता है उसके प्रति श्रद्धा, और दूसरा है जो सब्जेक्ट मैटर विषय चर्चित हो रहा है उसके प्रति श्रद्धा। और ये नहीं है तो बस हम क्या कर रहे हैं, नाम के लिए एक स्टैचू के भांति पुतले के जैसे बैठे रहते हैं और अपना अटेंडेंस लगाते हैं भागवत क्लास में, बस किसने करना है, नहीं तो प्रभु क्या कहेंगे, उनकी क्लास में नहीं पहुंचूंगा तो क्या कहेंगे। तो ऐसे श्रवण से हृदय में कुछ होने वाला नहीं है, परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं, हे महाराजा परीक्षित, ये कोई काल्पनिक घटनाएं नहीं है कृष्ण लीला। वो कहते हैं कि ये अद्भुत चर्चा है भगवान कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण अद्भुत है, छह ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान है, इसलिए उनकी कार्यकलाप भी बहुत ही अद्भुत है। कभी कभी हमें लगता है कि ये सही में हुआ होगा क्या, ये जो कृष्ण की ऐसे ऐसे लीला है, कभी पंछी आ रहा है चोंच बड़ी करके, कोई अजगर आ रहा है, हाँ सारे पशु कृष्ण की लीला में आ गए आंसू बन के। हाँ तो इन पर यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सहित इंद्रियः। जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है उसको भगवत ज्ञान उसके हृदय में प्रकट होता है, या भगवत ज्ञान उसे समझ में आता है सरलता से। और जो श्रद्धा से विहीन है वो व्यक्ति को इस जगत में कोई स्थान नहीं है। अश्रद्धाना, जो श्रद्धा से रहित व्यक्ति है उसके लिए आध्यात्मिक जीवन क्या है, बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। अभी कोई पूछे कि भक्ति में सही में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या योग्यता है भक्ति में प्रवेश करने का, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उसके लिए बस व्यक्ति के हृदय में क्या चाहिए, श्रद्धा। और जितनी मात्रा में व्यक्ति की दृढ़ श्रद्धा होती है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, वैष्णव के प्रति, भगवान नाम आदि के प्रति, उतना ही वो उन्नत माना जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं इलाहाबाद में, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्तों के तीन अलग अलग स्तर है, एक है कनिष्ठ भक्त, एक है मध्यम भक्त और एक है उच्च भक्त। तो इनका जो वर्गीकरण है अलग अलग स्टेज में है, ये इसके आधार पर किया गया है। इसके ये नहीं कि उसमें ज्ञान कितना है, बाकी चीजें कितनी है, प्रमुख एलिमेंट कुछ है जिसके आधार पर इन तीनों का वर्गीकरण किया गया है, तो वो एक ही है और वो है श्रद्धा। श्रद्धा के आधार पर ये नहीं कहा गया कि ये बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें इतना ज्ञान है, सारे श्लोक उसको पता है, वो उन्नत भक्त का क्वालिफिकेशन नहीं है। योग्यता क्या है, उस भक्त की कितनी गहरी श्रद्धा इस विधि और भगवान आदि के प्रति है, उसके अनुसार उसको बोला गया है। कोमल श्रद्धावान कनिष्ठ भक्त है, उससे थोड़ी अधिक श्रद्धा मध्यम अधिकारी, और बिल्कुल ही गहरी श्रद्धा किसके पास है, उत्तम भक्त के पास। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद उत्तम भक्त है, लेकिन उत्तम हैया आपना के माने अधर। उत्तम भक्त देखता है कि सारे लोग डिवोटीज हैं, सारे मुझसे आगे हैं, मैं सबसे पीछे हूं। और मध्यम भक्त वो सही रूप से जानता है कौन उत्तम है और कौन निम्न है। और जो कनिष्ठ भक्त होता है उसको कोई बड़ा भक्त नजर नहीं आता, उसको लगता है सबसे अच्छा भक्त यहाँ कोई है, मैं, सबसे अच्छा साधना किसका है, मेरा है। सब कुछ उसे लगता है कि मेरे अलावा उन्नति कोई नहीं कर रहा है, सारे भक्त नीचे हैं। तो ये कनिष्ठ भक्त था, उसको भक्तों की महत्वता कभी समझ में नहीं आती, उसको केवल भगवान दिखाई देते हैं और स्वयं दिखाई देता है, बीच में कोई उसको अड़चने नहीं चाहिए, उसको भक्त बीच में नहीं चाहिए। लेकिन वो भूल जाता है कि यश प्रसाद भगवान प्रसाद। कनिष्ठ भक्त का क्या है लक्षण, वो भक्तों को आदर सम्मान नहीं प्रदान करता, वो केवल भगवान को ही आदर सम्मान प्रदान करता है। ये कनिष्ठ या निम्न भक्त का एक लक्षण है। तो इसलिए वास्तव में भक्ति का जो मूल एक एलिमेंट है जिसको कहा है श्रद्धा, और श्रद्धा के बिना आगे बढ़ना असंभव है। इसी कारण से परीक्षित महाराज को शुक्रदेव गोस्वामी श्लोक में कहते हैं कि वास्तव में इस जगत के जो लोग हैं, बल्कि स्वर्ग के जो देवता हैं, हमें बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं, मानो आपके सामने कोई सुअर गंदगी से भरा हुआ गुजर रहा है, आप उसका गुणगान थोड़ी करोगे, आपको किस चीज ऐसा गंदा है नाक पकड़ लोगे या फिर भागोगे वहां से, नीच भावना से देखोगे। वैसे ही स्वर्ग के लोग हमें देखते हैं, अरे हीन मनुष्य जाति का है, ऊपर से देखते हैं इतने लगते हैं मनुष्य, और वो कहते हैं ये हीन लोग हैं, क्योंकि इनका जन्म मर्त्य लोक में हुआ है, इसलिए यहाँ शब्द यूज करते हैं मर्त्य, जो मरने वाले हैं देवतागण में मरने वाले, लेकिन जल्दी नहीं मरते हो, वो क्या पाप करते हैं, अमृत का पान करते हैं, अमृत पीने से व्यक्ति जीवित रहता है लंबे जीवन के लिए, ऐसे नहीं को कभी मरेगा नहीं, अमर हो जाता है, परंतु उसको मृत्यु है लेकिन लंबे समय के बाद, इसलिए उस अवधि की ठीक से गणना नहीं करते, इसके कारण उनको अमर कहा जाता है, क्योंकि वो उसका पान करते हैं, अमृत का पान करते हैं। तो यहाँ शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं मरते लोगों के लिए, मरते जगत में जो जीव है उनके लिए सबसे सरल विधि कुछ है, भगवान के प्रति क्या बढ़ाने के लिए, लभते रतिम, रतिम मीन्स अटैचमेंट, लव, भगवान के प्रति आसक्ति, प्रेम, वो जो भावना है वो बढ़ेगी यदि व्यक्ति क्या करेगा, शुणया श्रद्धया। इसलिए परीक्षित महाराज भागवतम के दूसरे स्कंद में कहते हैं यदि भगवान को किसी ने अपने हृदय में बांध के रखना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है क्या, भगवान के बारे में सुनो। अभी हमारा सुनने में कोई श्रद्धा नहीं होती, सुनना हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या है, क्योंकि जब से जन्म लिया है तब से हम किसी की बात सुनते नहीं, सुनते हैं क्या, जन्म लेते बच्चा जो मन में आए करना चाहता है, माता पिता की नहीं सुनता, बड़ा हो जाता है कॉलेज जाता है नहीं सुनता किसी की, मन मर्जी से शादी करेगा सुनता है, घर वालों की नहीं सुनता, वैसे ही फिर माता पिता से अलग हो जाता है, उनके लिए सुनते, इस संसार में कोई किसकी नहीं सुनना चाहता, तो हम कैसे भगवान के बारे में सुनना चाहते। इसलिए एक लक्षण क्या है ना सुनने का, इसके बाद एक लक्षण शास्त्र कहते हैं ईर्षा। जब हमारे अंदर द्वेष और ईर्षा की भावना होती है ना, तो हम उस व्यक्ति की बात नहीं सुनना चाहते, और जब हमारे अंदर अहंकार की भावना होती है तो हमें लगता है क्यों सुनो उसकी बात, है ना, मैं बड़ा हूं, लगता है कि मैं बड़ा हूं मुखिया, तो ईर्षा की भावना से, मिथ्या अहंकार की भावना से हम किसी की बात नहीं सुनना चाहते। उसी प्रकार से जब जीव के अंदर ये मिथ्या अहंकार बढ़ जाता है, जिसके कारण वो भगवान की चर्चा कभी भी सुनने के लिए तत्पर नहीं होता, इसलिए महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तव में हमें ये जानना चाहिए कि ये जो महत्वपूर्ण दवाई है वो केवल कृष्ण कथा है, इसलिए पहले श्रद्धा इसके प्रति भी होनी चाहिए, भगवान की चर्चा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, कृष्ण कथा के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, और श्रद्धा ना हो और आपके हाथ में कितना भी सुलभ और मूल्यवान वस्तु हो भगवत प्राप्ति की, तो भी आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जैसे विभीषण जब भगवान राम को मिलने के लिए आए थे, और उनके साथ कुछ और लंका के आसुर भी आए थे, दो तीन राक्षस आए थे और आए और भगवान राम आदि के साथ विभीषण मिल रहे थे। तो विभीषण ने कहा भी राम जी कह रहे कि थोड़े दिन के लिए रुको, तो उनके साथ रुकते हैं और आसुरों को कहते हैं आप चले जाओ। तो अभी जाना है तो उस सागर को पार करना कितना कठिन है, भगवान पार नहीं कर पाए, उनको क्या बनाना पड़ा, ब्रिज बनाना पड़ा। तो इन्होंने क्या किया, एक वृक्ष के पत्तों में कुछ लिख के इन आसुरों के हाथ में दे दिए और इस राक्षसों को कहा कि आप इसको पकड़ लीजिए और बस सागर में घुस जाइए, आप सागर में डूबेंगे नहीं, आप उसको पार करके जाएंगे पूरा सागर, कितना कितना तक पाव जाएंगे घुटने तक। अच्छा, इन्होंने वो ले लिया, एक पत्ता था, दो पत्ते ऐसे उसके अंदर कुछ था और उन्होंने दिया था विभीषण ने, तो इन्होंने लिया हाथ में और ये दो राक्षस घुस गए अंदर। हाँ चलो विभीषण ने कहा है, लेकिन अंदर गए और वैसे होता है ना, पहले हमारी श्रद्धा होती है थोड़ी सी, फिर बाद में डाउट आने लगते हैं, संशय। और गीता में भगवान क्या कहते हैं, संशय आत्मा विनश, संशय आत्मा का निश्चित रूप से विनाश है। तो वैसे ये घुसे अंदर तो देखा कि इनका जो पानी है सागर का जल, हाँ वो घुटने तक लग रहा था, घुस रहे थे, बीच में गए। फिर दूसरा कहते हैं अरे विभीषण ने क्या जादू का वो दिया है, जरा देखो। कहते नहीं नहीं देखना नहीं है, नहीं नहीं देखो क्या है वस्तु जिसके द्वारा ये सागर भी घुटने तक लग रहा है। जब आप जानते हैं हनुमान सागर को पार करके गए आश्रम वाटिका में, माता सीता माँ बैठी थी उनसे मिले और सीता देवी ने पूछा अरे तुम तो बंदर नजर आते हो, इतने से छोटे से कैसे इतने बड़े सागर को पार कर लिया। वो कहते एक नाम मेरे पास थी और वो कौन सी नाम, भगवान राम का नाम। उन्होंने बोला मैं जैसे चिल्लाना जय श्री राम, सीरियल देखा है रामायण, वो जैसे हनुमान को जब भी बोलना हो वो एक ही शब्द बोलता है जय श्री राम, वैसे हमारे लिए है। बेड से सुबह उठने की इच्छा नहीं होती मंगल आरती में, जैसे हाथ खोली तुरंत क्या बोला है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। कभी कभी हम महसूस करते हैं हम तो उधर ही रहते हैं रथ रोड के उस पार, वो रोड तक रोड ऐसे लगता है कि महासागर है, उसको पार करके आने के लिए भी कितनी बार सोचना पड़ता है मंगल आरती जाओ कि नहीं जाओ, सागर को कैसे पार कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति है। लेकिन यहाँ हनुमान कहते माता सीता मैं तो पार कर पाया केवल भगवान राम के नाम से, और मैं जैसे भगवान नाम का उच्चारण किया तो वो सागर छोटा हो गया। सीता देवी कहते कितना छोटा हो गया, तो हनुमान कहते जैसे गाय का बछड़ा जब गीले मिट्टी में पांव डालता है, गोबर जिसके कहते हैं उसमें जितना जल बैठता है उतना छोटा हो गया। सीता देवी ने आगे बड़े कर दी कि कौन सी क्या भाषा बोल रहे बंदर हनुमान जी, तो ये क्या है श्रद्धा, किसके प्रति श्रद्धा थी, भगवान राम के नाम के प्रति। श्रद्धा के बिना सारी जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो विफल है, वो केवल दिन गिन रहे हैं, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, भगवान के नजदीक नहीं काल के नजदीक जा रहे हैं। श्रद्धा के साथ सारे कार्य करेंगे तो हम कृष्ण के नजदीक पहुंचेंगे। श्रद्धा के बिना जितनी मंगल आरती अटेंड करो जितना जप करो वो क्या है, दिखावा मात्र है, उससे कभी भी भगवान के नजदीक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ ये आसुरों के हाथ में तो उस था, एक बोलता है खोलो देखो क्या है, तो कहते नहीं नहीं, फिर उस संघ का प्रभाव पड़ता है जितना भी मर्जी आप कुछ कहो। हाँ तो फिर उसने बोला देखा अरे ये क्या है, दो अक्षर लिखे हुए हैं उस पर, क्या लिखा हुआ था, राम। अभी ये दो अक्षर इससे ही हो रहा है, इससे क्या होगा, वो विभीषण पागल तो नहीं है, कई बार हम कोई भक्त बोलते हैं ना ये करो ठीक हो जाएगा आपका भजन सारा, पागल भक्त है कुछ भी बोलता है, हाँ उससे क्या होगा। तो वैसे ही हाँ, उन्होंने इतना फेथलेस हो गए हाँ, उसको फेंक दिया, उस राम नाम जो लिखित था उस पत्र पर फेंक दिया और चलने लगे। चलने के अगला कदम उठाते ही डूब गए और उनका विनाश। तो वैसे ही है, श्रद्धा के बिना इस संसार सागर में हमारा डूबना निश्चित है। ये भक्ति सरल है, कौन से व्यक्ति के लिए? जिस व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा है, और श्रद्धा हर भक्ति के कार्यों के प्रति, छोटी छोटी चरणामृत में श्रद्धा होती है। दस बार सोचता है अरे वो बर्तन धुला है कि नहीं है, श्रद्धा के साथ रोज चरणामृत लेंगे तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पाद विधवा पुनर्जन्म लगते। कोई व्यक्ति श्रद्धा से यदि चरणामृत भी रोज लेता है ना गंभीरता से, कोई संसार में वापस नहीं आएगा। कई तो लेते हैं कि बड़ा स्वीट है, ग्लास भर भर के पी लो, ये श्रद्धा नहीं है, ये जीवा का आग्रह आ गया ना उसकी तुष्टि है। और प्रसाद पाते तो श्रद्धा होती है, श्रद्धा से कार्य करने पड़ेंगे, श्रद्धा से भागवत कथा में बैठना पड़ेगा, श्रद्धा से भगवत प्रसाद को ग्रहण करना पड़ेगा, या फिर श्रद्धा से हमें चरणामृत आदि को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और श्रद्धा यदि नहीं है तो फिर सारी चीजें क्या है? विफल है। इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने देखा कि ये परीक्षित के हृदय में बहुत बड़ी श्रद्धा है और बहुत गहरी श्रद्धा है, तो उन्होंने वास्तव में उनको भगवत लीला या श्रीमद् भागवतम सुनाया। तो इसी कारण से ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है श्रद्धा। इवन हम भगवान को प्रणाम करते हैं, जब भगवान को कोई दंडवत करता है ना श्रद्धा के साथ, कृष्ण कांपने लगते हैं वहां, वो सोचते इसने मुझे खरीद ही लिया। भगवान सावधान, आप देखो कोई आपको प्रणाम करता है आप इनअटेंटिव रहोगे? नहीं, कॉन्शियस हो जाओगे। इसलिए भगवान का जब मंदिर बंद, दर्शन बंद होता है तब हमें मना किया गया है कि तब प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अगर विश्राम कर रहे होते हैं, वो प्रणाम कर रहा है तो उनको उठ के बैठना पड़ता है, अरे प्रणाम कर रहा है, या उनका आवेशन हो रहा है तो कहते हटाओ ये शंका आदि, वो देखने मुझे भक्त मुझे प्रणाम कर रहा है। जब हम परिक्रमा आदि करते हैं कृष्ण सावधान हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण हमारे जैसे असावधान नहीं है। इसलिए गुरु पूजा में भी हम खड़े रहते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर ने एक शब्द पे डाल दिया है, क्या? वंदो मुए सावधान मते, सावधानी के साथ आध्यात्मिक गुरु की क्या करो? वंदना करो। तो इसलिए भक्ति का कोई भी कार्य हमारे पास क्यों ना हो, कोई भी सेवा क्यों ना हो, सारी सेवाएं एक समान है। हाँ? कोई कहे कि क्या ये धर्माष्टमी मुझे खड़ा कर दिया वहां पार्किंग में, या क्या मुझे मेन एंट्री गेट में नहीं खड़ा किया जहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, या सीधा अल्टर के पास खड़ा नहीं किया, या जो पुजारी जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल अंदर लगा पड़ा है भगवान के नजदीक, वो महान है? महान कोई नहीं है, महान एक ही व्यक्ति पूरे फेस्टिवल में जो अपने हित की चिंता किए बिना श्रद्धा के साथ जो सेवा दी गई है उसको करता है बस, और कुछ उसे पता नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए उस दिन वो तैयार है, जहां मर्जी उसको खड़ा कर दो, जो मर्जी सेवा दे दो वो करेगा, जब तक वो सेवा का टाइम खत्म नहीं होगा तब तक। ऐसे नहीं कि सेवा दी है उससे पहले देखते 12 बजेंगे, हाँ क्योंकि उसके 12 बजे होते हैं, वो भगवान के 12 बजे जो रात का उनका जो प्राकट्य है उसके बारे में सोचता है। तो इसी कारण से हमें श्रद्धा का विकास करने का सोचना चाहिए। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है? श्रद्धा बढ़ती है शास्त्रों का अध्ययन करने से, भक्तों का संग करने से, और भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करने से। बारंबार श्रवण करेंगे तो श्रद्धा का विकास होगा, श्रद्धा बढ़ेगी, और जितनी मात्रा में श्रद्धा बढ़ेगी उतनी मात्रा में हम कृष्ण के क्या होंगे? नजदीक होंगे। फिर हमारी श्रद्धा आध्यात्मिक गुरु के वचनों में बढ़ेगी, भक्तों के शब्दों में बढ़ेगी, शास्त्रों में श्रद्धा होगी। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, श्रद्धा के बिना सारे कार्य का कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बारंबार ये आंदोलन प्रभुपाद ने इसलिए बनाया है कि हमारे श्रद्धा का क्या हो, विकास हो। इसलिए शुक्रदेव गोस्वामी को एक श्रद्धावान भक्त मिले। कौन थे वो श्रद्धावान भक्त? परीक्षित महाराज। ऐसी श्रद्धा, देखो परीक्षित महाराज को ठीक से यदि सोचेंगे उनके बारे में कितनी श्रद्धा है, कितना फेक कि मैं एक जगह बैठकर गंभीरता से 7 दिन जो जितना मेरे पास समय बचा है कृष्ण के बारे में सुनूंगा ना एकाग्रता से, मुझे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए कितना बड़ा फेक चले। हमें लगते है भगवान के बारे में सुनने से क्या होगा, लेकिन परीक्षित ने क्या किया, शुकदेव गोस्वामी के चरण में बैठे और केवल तन्मयता के साथ भगवत चर्चा को सुना और इतना उन्होंने महान लाभ प्राप्त किया कि आज तक सारे लोग उन्हीं का गुणगान कर रहे हैं। जब श्रवणम की बात आती है तो किसका नाम आता है सबसे आगे? परीक्षित महाराज का। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इवन भगवान की जो भार्या है रुक्मिणी देवी, वो भी भगवान की प्रिया बने थे श्रवणम करके, और जब उन्होंने भगवान की लिए स्तुति बोली तो पहला शब्द उन्होंने यही यूज किया था, श्रवणम। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैं आपके प्रति मेरा जो प्रेम है वो जागृत कर पाई, रुक्मिणी कहती है, क्योंकि कृष्ण मैंने आपके बारे में सुना था। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं यदि कोई श्रद्धा के साथ व्यक्ति भगवान के बारे में नियमित रूप से सुनता है, गोविंदे लभते रति, भगवान गोविंद के प्रति निश्चित रूप से उसके हृदय में प्रेम या आसक्ति की भावना जागृत हो जाएगी। और इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं मैंने ऐसा एक ग्रंथ आपके लिए छोड़ा है। कौन सा ग्रंथ छोड़ा है? कृष्णा पुस्तक। प्रभुपाद रोज कृष्णा बुक पढ़ते थे। लॉस एंजलिस में जब प्रभुपाद थे तो उसके गार्डन में प्रभुपाद बैठते थे और अपने एक शिष्य को बोलते थे कृष्णा पुस्तक लेके आओ और कृष्ण लीला पढ़ो। और प्रभुपाद जब उनका शिष्य कृष्ण लीला पढ़ता था प्रभुपाद बहुत आनंदित होकर सुनते थे, हंसते थे, आनंदित हो जाते थे और प्रतिदिन हर रोज भगवान की लीला के बारे में सुनते थे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि मैंने ये कृष्णा पुस्तक आपके लिए छोड़ी है। और प्रभुपाद कहते इसको पढ़ने मात्र से मनुष्य को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अभी उसके लिए श्रद्धा चाहिए। कभी कभी लगते हैं क्या ये कृष्णा बुक से होगा हमारे साथ, लेकिन बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद ने बोला है कि यदि पढ़ोगे हाँ तो आप जरूर मुक्त हो सकते हो और धीरे धीरे क्रमशः भगवान के प्रति अनुराग विकसित हो सकता है। तो इसलिए कार्य बड़ा सरल है, बहुत सुलभ है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमारे हृदय में? श्रद्धा चाहिए। इसलिए अभी किसी चीज पर काम करना है तो इस चीज पर काम करना है कि मुझे श्रद्धा के साथ सारे कार्य करने हैं। प्रसाद में पाया पाऊंगा तो ये विचार करना चाहिए कि कृष्ण ने अपने जीवा से टेस्ट कर लिया, कृष्ण की थूक इसमें मिली हुई है। ये भावना प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, भगवान भोग को स्वीकार करते हैं, प्रसाद रूप में हमें देते हैं, इसका मतलब कृष्ण की थूक उसमें मिली है और वो अत्यंत पवित्र है। इसलिए कोई ऐसे भावना से प्रसाद को भी स्वीकार करता है तो उसकी जीवा सबसे पहले कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि सब सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड को आपने कंट्रोल में कर सकते हैं एक चीज के बिना। किसके बिना? जीवा के बिना। अपने जीवा को कंट्रोल में नहीं कर सकते हैं, आपके पास हजारों लोग आपके कंट्रोल में हो सकते हैं, लेकिन ये जीवा कंट्रोल में आ सकती है भक्ति और ठाकुर कहते कैसे? कृष्ण प्रसाद को ग्रहण करके। अभी कभी कभी हम देखते सालों साल बीत गए कृष्ण प्रसाद था खाकर, लेकिन जीव कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने कभी प्रसाद को प्रसाद के रूप में स्वीकार नहीं किया, प्रसाद को भोग के रूप में स्वीकार किया है। प्रसाद को किस रूप में स्वीकार करना है? प्रसाद की भावना से। तो इसलिए श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, और श्रद्धा से ही हम वास्तव में भक्ति प्राप्ति का अधिकार हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे भगवान ये पूतना का वध इस अध्याय में है। आप सबने पूतना लीला सुनी है, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि पूतना लीला को फिर से दोहराता हूं। किस प्रकार से भगवान ने पूतना राक्षसी का क्या कर दिया था, वध किया था। बल्कि भगवान विज्ञापन करते हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि यदि कोई व्यक्ति उनके साथ संबंध स्थापित करता है तो उसको क्या मिलेगा। अभी हम हर कार्य के पीछे हमेशा ये फल की आकांक्षा रखते हैं। मैं मंदिर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, भागवतम क्लास करूंगा तो क्या मिलेगा, ये कार्य करूंगा तो क्या मिलेगा, और मिलेगा तभी करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। ये हमारी बड़ी चाल है। तो वैसे ही भगवान भागवत में बोलते हैं, मुझसे संबंध स्थापित करोगे तो क्या मिलेगा। वास्तव में भागवत का सार क्या है पता है आपको? भागवत का सार है कृष्ण के साथ इम्परफेक्ट संबंध भी हम बनाते हैं तो वो जीवन की पूर्णता है। और इस संसार में किसी के साथ भी बहुत परफेक्ट संबंध बना दो और जीवन में कृष्ण के साथ संबंध नहीं बना पाए तो वो जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। तो इसलिए सफलता क्या है, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण के साथ संबंध बनाना है, वो हमारे जीवन की सफलता है। तो भगवान कहते हैं मेरे साथ संबंध बनाने से क्या मिलेगा। बल्कि भागवत में सारे जो उदाहरण है राजा महाराजा के, वो यही है कि किसने किसने कैसे कैसे भगवान के साथ संबंध बनाया। हाँ, जितने बड़े बड़े जैसे आप सोचते हैं कि हमारे लिए हमारे जो आदर्श 12 महाजन है, एक बार बता रहा था आप सबके आदर्श 12 महाजन हो सकते हैं, लेकिन मेरा आदर्श आजादी है। कैसे, वो कहते आदमी बड़ा अच्छा है, उसने जीवन का आनंद भी उठाया और बाद में भगवान को भी प्राप्त कर दिया। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, वो इस प्रकार से आदर्श किसी को स्वीकार करते हैं। इवन आजादी के जीवन में भी देखें तो उन्होंने मृत्यु के अंत में किससे संबंध स्थापित कर दिया था, भगवान से। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें किसी ना किसी प्रकार से भगवान के साथ अपना संपर्क स्थापित करना है, संबंध ऐसे दृढ़ बनाना है तो बहुत बड़ा लाभ हमें प्राप्त होता है। तो ये जो लीला है पूतना की, जो संक्षिप्त में वर्णन करता हूं कि कैसे भगवान उसको सबसे बड़ा पद प्रदान करते हैं। हम सुनते हैं कि भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ और वसुदेव उनको लेके गए कारागार से बाहर। कहां ले गए? वृंदावन में, गोकुल महावन में नंद महाराज और वो सब निवास करते थे। तो जब भगवान का प्राकट्य कारागृह में हुआ तो उस समय अंधकार था सब जगह और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे वो क्या कर रहे थे, धराटे ले रहे थे और वो सो गए थे। भगवान का प्राकट्य होते ही सब सो जाते हैं। वैसे 12 बजे रात को भगवान प्रकट होते हैं, तुरंत हम नींद आना शुरू हो जाती है, तुरंत सोना शुरू करते हैं। और वास्तव में एक ही चीज है जो हमें जगा के रखती है, कौन सी चीज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में हरे कृष्णा मंत्र नहीं होता ना तो अधिकतर सारे भक्त हम सोते नजर आते हैं। सब चीजों में फेस्टिवल्स में भी यदि हरे कृष्णा का कीर्तन ना हो, पूरे दिन उसकी जगह कथा हो, कथा मेला हो, कीर्तन मेला जैसे पूरा 24 घंटे चलता है 12 घंटे। और वैसे कहा जाए कि अभी पूरा कृष्ण कथा का मेला है, 12 घंटे कृष्ण कथा की चर्चा होगी तो हमें नींद आएगी। तो वैसे ही भगवान, जब भगवान को वसुदेव ले गए वृंदावन में और वहां उन्होंने एक्सचेंज किया, उनकी कन्या को लेकर आ गए वसुदेव यहाँ और कृष्ण को वहां छोड़ दिया। और कन्या को लाए तो उस समय देवकी बहुत आनंदित हो गई थी और दुखी भी थी। तो यहाँ वृंदावन में दूसरे दिन पता चला यशोदा माता को बहुत लेट कि बालक ने जन्म ग्रहण किया है, और फिर लगभग 6 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 6 दिन। तो यहाँ मथुरा में देवकी उस बालिका को लेकर ऐसे खड़े थे, और सुबह सुबह सिक्योरिटी गार्ड्स ने कहा जाकर कि अंदर से कारागृह से बच्चे की चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो वीर सुनकर कंस पेड़ में लेटा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि अभी होता है ना, हर एक का लकी नंबर होता है। कुछ लोग इतने पागल होते हैं वो घर का नंबर भी वही रखेंगे, कार का नंबर भी, मोबाइल का नंबर, सब एक ही नंबर होना चाहिए, या अंतिम जो अक्षर है वो अंतिम नंबर ना 7 7 5 5 8 सबका नंबर वही, ऑफिस का नंबर, गली का नंबर, वैसे वो सोचते लकी नंबर है। कंस के लिए लकी नंबर क्या था? 8। 8वां 8 सुनते ही कंस ऐसे डरने लगता था। रात को ऐसे ऐसे सपने आते थे। एक बार कंस ने सपना देखा कि उसको गधे के ऊपर बिठाया है, और उसमें पूरा कालीमा काला लगाया है, उसकी बारात निकल रही है। और वास्तव में सपना देखना में सोचना कि मृत्यु नजदीक आ गई है। तो ऐसे ऐसे सपने भागवतों में बोले हैं। कंस दिख रहा था, उसे पता चल रहा था कि उसका काल नजदीक है। अभी जैसे उसको पता चला, 6 को तो उसने मार दिया था, 7वां गर्भ रोहिणी के इसमें चला गया था, बलराम के रूप में प्रकट होकर 8वां प्रकट हो गया है। ये वैसे उठा, पेड़ से मुंह आगे नहीं धुआं, चिल्लाते हुए आया इस कारागृह के बाहर, और अंदर घुसते ही देवकी क्रंदन करने लगी। बहुत रो रही थी देवकी माता, ऐसी विलाप कर रही थी। कंस को वो गिड़गिड़ा रहे थे, वो कह रहे थे नहीं नहीं भ्राता, ये तो पुत्री है। और आकाशवाणी ने बोला था, क्या बोला था? 8वां पुत्र आपको मारने वाला है। तो इतना भयानक था वो वातावरण, देवकी माता रो रही थी, लेकिन उसके हाथ से उस कन्या को खींच लिया इसने, और खींचकर क्या किया, वहां एक पत्थर हुआ करता था बड़ा, पत्थर को हर बालक को उसी पत्थर पर मारा है उसने पटक के। वैसे उस कन्या को उठाया और पटकाना चाह ही रहा था, तो वो कन्या उसके हाथों से छुमंतर हो गई, चली गई आकाश में, क्योंकि वो कौन है? भगवान की बहिरंगा शक्ति है, योग माया है। भगवान ने कहा है योग माया, आप मेरे बहन के रूप में प्रकट हो जाओ, और इस संसार के लोग क्या करेंगे, जब तुम प्रकट होगी तो बहुत स्थानों में तुम्हारी पूजा करेंगे, नारियल के द्वारा, अग्रु के द्वारा, सिंदूर आदि के द्वारा, दुर्गा देवी जो प्रकट हुई थी। तो फिर वो देवी कहती है कि अरे मूर्ख, तुम्हारा वध करने वाला तो पहले ही प्रकट हो गया है। ये बड़ा ड्रामेटिक वर्णन है, बार बार आप सुनते हैं लेकिन आनंदित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कृष्ण है। हाँ, तो इसलिए जब भी पता चला, अभी जो वसुदेव देवकी रो रहे थे वो शांत हो गए, अभी रोने का काम कौन करने लगा? अभी इसके बारे में, अभी ये रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, हे बहन, हे जीजन, क्या करते, प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिए, चरणों में गिरा कर भागवत में आता है, चरण पकड़ने लगा। लेकिन भक्तों का हृदय बड़ा सरल होता है, भक्तों का गुण क्या है? क्षमा करना। ब्राह्मण का कोई ब्राह्मण है और क्षमा करने का गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए भक्तों का एक बड़ा गुण होता है क्षमा करना। तो इन्होंने क्षमा कर दिया, और अभी लग रहा था कि कंस भी भक्त बन गया, ऐसे लग रहा था। लेकिन कंस जैसे शाम को गया ना अपने रूम में, और वहां बहुत सारे उनके आश्रम मित्र आदि इकट्ठा हो गए, तब उन्होंने कहा कि ये इसलिए जो घटना बता दी कि वो बच्चे को मार रहा था वो देवी बन गए। वो आंसू कहने लगे सब चमत्कारी है, देखो जितने भी बच्चे पैदा हो गए ना 10 दिन में, सबको एक कैंपेन शुरू करो, क्या एक आंदोलन छेड़ दो, सारे बच्चों को मारने का आंदोलन। फिर देखा नेता किसे बनाया जाए, कोई सेवा होती ना उसको हम लीडर बना देते हैं, इसमें एक्सपर्ट है। वैसे बच्चों को मारने में एक्सपर्ट माता थी। कौन थी वो माता? प्रभुपाद कहते आजकल की जो माताएं हैं वो भी पूतना की तरह, पूतना बच्चों को मारने के लिए एक्सपर्ट थे, वैसे आजकल की स्त्रियां गर्भपात कराती है, क्या कहते हैं उसको, अबॉर्शन। हाँ, तो वो पुत्रा की तरह ही है, उतना वैसे दूसरों के सबके बच्चों को मारते थे, आजकल की स्त्रियां अपने ही बच्चों को मारने के लिए क्या है, एक्सपर्ट हो गई है। और वैसे भी भक्त कहते हैं पूतना का जो मूर्तिमान रूप घर में कोई है तो वो टेलीविजन है। कौन है, टेलीविजन। टेलीविजन देखो पूतना के समान ही है। पूतना दिखने में बड़ी, जब वृंदावन में आए ना तो लक्ष्मी के समान दिख रहे थे, लेकिन बाद में उसका रूप कैसे हो गया, मूल रूप। तो पहले टीवी सबके घर में आए ना तो एक ही चैनल था, दूरदर्शन। और फिर घर में जैसे जैसे आगे कितने चैनल है, उसका मूल रूप दिख रहा है, हजारों चैनल, लोग सारे लोग पागल होते हैं, बच्चे पत्नी माँ बाप सब एक के ऊपर एक उठते हैं रिमोट के लिए, लड़ाई करते हैं। तो ऐसी स्थिति है। और आजकल के स्त्रियां बच्चों को नहीं संभालती, वो काम करेंगी, कुछ मोबाइल में गपशप करेंगी, किटी पार्टी जाएंगी, और बच्चों को कहाँ बिठाएंगे, पुत्रा के सामने। बच्चे पूरे दिन पुत्रा के सामने बैठ कुकिंग कर रहे होंगे, उतना टेलीविजन है, उतना बच्चे को पूरा खत्म कर देते, उसके संस्कार सब कुछ डिस्ट्रॉय। तो वैसे ही ये जो पुतना देवी है ये एक्सपर्ट थी। फिर कंस ने सोचा कि इसको भेजते हैं, तो पुतना को पता चला कि नंद महाराज के घर में अभी अभी नए बालक ने जन्म लिया है। तो पुतना का एक नाम खेचरी है, खे मीन्स आकाश, चरी मीन्स विचरण करती है। तो ऐसी जो पुतना है वो आती है ब्रज में, और वो सोचती है ऐसे मूल रूप में प्रवेश करूंगी तो सब लोग भाग जाएंगे या मुझे कुछ कर सकते हैं। तो वो रूप बदलने में एक्सपर्ट थे, जैसे हम ब्यूटी पार्लर में जाते हैं रूप बदलने के लिए, पहले चित्र विचित्र दिखते हैं, कोई फेस्टिवल आ गया, शादी का उत्सव आ गया, कुछ आ गया, तो कहाँ घुसते हैं, ब्यूटी पार्लर में। तो सब पुरुष हो स्त्रिया हो, सब हम लक्ष्मी की तरह सुंदर बनना चाहते हैं, नारायण की तरह सुंदर बनना चाहते हैं। वैसे ही ये पुत्रा ने अपना रूप बदला, जैसे ब्रज के उसमें प्रवेश किया। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जहाँ भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन होता है वहां कभी भूत प्रेत पिशाच आदि प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर प्रश्न उठाते हैं कि कैसे पुत्रा जैसे आसुरी ने प्रवेश किया ब्रज में, वहां तो साक्षात कृष्ण है और ब्रजवासी नाम संकीर्तन आदि करने में सदैव लगे रहते थे। तो शुकदेव गोस्वामी क्लियर करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की इच्छा थी, भगवान चाहते थे कि उनको एक विशेष लीला प्रकट करनी थी जिसके लिए उनको प्रवेश देते हैं। और पुतना आई तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं वो एग्जैक्टली लक्ष्मी की तरह दिख रहे थे, और उसने अपने हाथों में कमल फूल ऐसे लिया था, और बहुत सुंदर उसका सौंदर्य का वर्णन किया है। और ऐसी चल रही थी रास्ते में ब्रज के, तो ये ब्रजवासी धन है वो सब काम धाम छोड़कर उसको देखते थे कि कौन सी स्त्री आते हैं हमारे गलियों में, ब्रज में किसने प्रवेश किया। इवन ब्रज की स्त्रियां भी काम छोड़कर किसको देख रही थी, उस स्त्री को देख रही थी। और ऐसे कमल हाथ में लेके सबको लगा नारायण की पत्नी आ गई है, लक्ष्मी कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए। वो भटक भटक के चल गई वहां, कहा नंद भवन में। अभी नंद भवन के दरवाजे में प्रवेश किया तो वहां दो स्त्रियां खड़ी थी, यशोदा माता और रोहिणी देवी। तो यशोदा माता सोचने लगी कितना अच्छा होता है लक्ष्मी आई है और ये मेरे बालक को आशीर्वाद देने आई है, शायद ये अपना स्तनपान भी करा दे क्योंकि मेरा बालक हृष्ट पुष्ट हो सकता है। और वास्तव में ये पुतना भगवान के लिए कुछ लेके आई थी। जब प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में पहले विग्रह स्थापित किए थे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तो ये सारे हिप्पियों ने पूछा प्रभुपाद जब हम ये मंदिर आएंगे ना तो कैसे आना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा खाली हाथ नहीं आना चाहिए, हाँ खाली हाथ नहीं आना चाहिए। प्रभुपाद कहते कृष्ण में, गीता में कृष्ण कहते पत्रम पुष्पा फलम तोयम, पान फल जल कुछ भी लेके आओ छोटा वो मुझे अर्पित करो। प्रभुपाद कहते ऐसा करोगे ना तो भगवान से क्या बनेगा आपका, संबंध बनेगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ददापि प्रतिगृणाति प्रेम के संबंध किसी से बनाने हैं, चाहे भक्तों के बीच में या भगवान के साथ, तो उसके लिए रूप गोस्वामी की 6 चीजें करनी चाहिए। किसी को आपको कुछ दे दो, उनसे कुछ स्वीकार करो, उनको कुछ खिलाओ, उनसे कुछ खाओ, उनको अपने मन की बातें बताओ, उनसे मन की बातें सुनो। वैसे भगवान के साथ है, ये 6 चीजें हम भगवान के साथ भी करते हैं तो भगवान के साथ हमारा प्रेम में संबंध स्थापित होता है। तो पोतरा देवी क्या लेके आए थे भगवान के लिए? 2 चीजें, दूध और दूसरा जहर, 2 चीजें लेके पहुंचे थे। उसने अपने स्तनों को, उसने कहा इस बालों को मार के रखूंगी, स्तन पान कराऊंगी और स्तन के ऊपर कालकूट विष जहर लगाया था। प्रभुपाद कहते हैं साइनाइड से भी प्रभावशाली है, इतना डेंजर था। तो ऐसे वो उनको दूध पिलाना चाह रहे थे और भगवान कृष्ण को जब उसने देखा, देखते ही समझ गए, उसको लगा ये तो आग का गोला है। क्या है? आग का गोला है। आग का गोला मानो राख से ढका हुआ है। पोतना ने ऐसे समझा, उसने समझा ये हाथ लगाने की वस्तु नहीं है, कृष्ण वैसे ही फायर है। उन्होंने ब्रज में क्या पी लिया था? क्या पिया था? दावादन पान किया था, सारे दावादि को पी लिया था। भगवान कुछ भी खा सकते, कुछ भी पी सकते। प्रभुपाद के पास एक दिन गया, प्रभुपाद ये भगवान राम ने मांस खाया था। प्रभुपाद कहते रास्कल, भगवान राम ब्राह्मण को खा सकते और तुम्हें भी खा सकते हैं। प्रभुपाद ऐसे इसको बोले, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। तो वैसे ही भगवान को उसने देखा, थोड़ी डर गई थी और पुतना जैसे खुशी देखा तो भगवान ने भी अपने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही भगवान सोचने लगे, क्या सोचा तो हम आप सबने सुना होगा। तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसलिए आंखें बंद की हैं, या आचार्यगण कहते हैं कृष्ण ने क्यों आंखें बंद की हैं, तो उसके कई सारे कारण बताते हैं। एक कारण वो बताते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मश ग्लानिर भवति भारतः, कि मैं धर्म की स्थापना करने के लिए अलग अलग युगों में अवतरित होता हूँ, और मैं अवतरित होता हूँ असुरों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो भगवान ने देखा कि मुझे किसी असुर का वध करना पड़ रहा है, तो पहले एक स्त्री का वध करना पड़ रहा है, बल्कि शास्त्र कहते हैं एक स्त्री वृद्ध और बालक का रक्षा करना चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे एक स्त्री को मारना पड़ रहा है, मेरा अवतार लेने का क्या लाभ है, आते ही पहले एक स्त्री की हत्या। फिर भगवान और आके बन के लिए तो और एक चीज सोचते हैं आचार्य जी, कहते क्या सोचा कृष्ण ने यह सोचा कि मैं इसको मारूंगा ना तो ये पीड़ा देखी नहीं जाएगी। जैसे होता ना कई बार माँ बच्चे को मारती गुस्से में, माँ अपनी आंखें बंद करती और मारती रहती क्योंकि उससे देखा नहीं जाता, वो चिल्ला रहा है, मुंह टेढ़ा कर रहा है। हाँ प्रेम भी होता है लेकिन गुस्सा भी होता है। तो वैसे ही भगवान ने सोचा इसको मारूंगा तो पूरा इसका बहुत पीड़ा होगी, रोएगी चिल्लाएगी, इसलिए मैं आंखें बंद कर देता, मैं देखना नहीं चाहता। और तीसरा एक कारण बताते हैं, भगवान आंखें बंद कर दी और सोचते हैं देखता हूं इसने क्या कुछ सेवा की है क्या, कभी मेरे कुछ पुण्य कार्य किया है क्या। हम याद आने के लिए नहीं, कोई श्लोक याद नहीं आता तो आंखें बंद कर लेते, सोचते श्लोक को याद ढूंढता हूं कौन सा श्लोक बोलना है। तो वैसे भगवान ने आंखें बंद की याद करने के लिए, याद किया तो भगवान को नजर आया। क्या कौन सी लीला नजर आई? वामन देव की लीला। अरे मैं तो बलि महाराज के यज्ञशाला में गया था, वामन बन के बटू ब्राह्मण ब्रह्मचारी बन के गया था और वहां बलि के पास जाकर 3 पग भूमि मैंने मांगी। बलि महाराज कहते अरे ब्राह्मण बालक, तुम्हें 3 भूमि में तो पूरा पृथ्वी दे सकता, बहुत कुछ दे सकता हूँ, और ज्यादा मांगो। हाँ तो वो कहते नहीं, इस संसार में जो लालची व्यक्ति है ना, भगवान वामनदेव कहते हैं उसको संसार का सब धन संपत्ति आदि दे दो, उसकी लाल लोभी भावना कभी पूर्ति नहीं हो सकती, वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो फिर भगवान वहां के बालक के रूप में बलि महाराज के यज्ञशाला में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो साइड में बलि महाराज की पत्नी और बेटी बैठी थी, उनकी पत्नी थी विद्यावली और बेटी रत्नमाला वहां बैठी थी। जब वो रत्नमाला ने देखा ये बालक, तो उन्होंने सोचा क्या सुंदर बालक है, ऐसा बालक तो मुझे होना चाहिए था। और इसको तो मैं दूध पिला सकती थी, क्या पिला सकती थी, दूध पिलाने की भावना उसके हृदय में जागृत हो गई। ये उसने इच्छा कर दी, भगवान ने तुरंत अपना पेन और पेपर निकाला, इच्छा को लिख दी। जो भी इच्छा करते ना प्रतिदिन सारी इच्छा लिखी जाती है, इसलिए इच्छा बड़े सावधानी से करनी चाहिए। कुछ भी इच्छा नहीं करनी है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। वैसे ही फिर जब देखा भगवान ने बहुत चलाक है, इसलिए चलाकी सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के साथ कभी चलाकी नहीं करना, इसके साथ कृष्ण के साथ और उनके भक्तों के साथ। तो कृष्ण के साथ चलाकी नहीं करनी है, कृष्ण सबसे बड़े चलाक है। तो ऐसे भगवान ने तीन पग मांगे, लेकिन दो पग में तो एक पूरा पृथ्वी ले लिया, सब कुछ लिया, दूसरे में पूरा आकाश आदर, तीसरा पाव रखे तो कहा रखे, बलि ने वचन दिया था। बलि कहता है ठीक है, मैंने अपने आप को नहीं दिया, मेरे वस्तुएं आपको दी है, मुझ पर तीसरा पग रखिए। भगवान ने उनको पहले बांध दिया, सर्प पास से बांध दिया बलि को। और ये सब देखा ना, मेरे पिता के साथ ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि रत्नमाला को अभी दूसरा मुड़ा है, दूसरी इच्छा गुस्सा, ऐसे बालक को तो जहर मिला के मार देना चाहिए। भगवान ने फिर से पेन पेपर निकाला, लिख दिया अभी इसको जहर भी पीना पिलाना चाहते मुझे, और क्या पिला रहे थे पहले, दूध भी। तो भगवान जब आग बंद किए ना, पुतना खड़े थे वहां, भगवान कहते अच्छा ये तो वो माता है, रत्नमाला जी है, जो मुझे दूध भी पिलाना चाह रहे थे, जहर भी पिलाना चाह रहे थे। भगवान कहता है ठीक है, तुम्हारा ऑफरिंग में स्वीकार करूंगा। हाँ भगवान स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, प्रेम। अभी इसमें तो मारने की भावना थी, ईर्ष्या थी, लेकिन फिर भी भगवान कहते मेरे पास आ गई है ना, तो मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहूंगा। तो पुतना ने फिर भगवान को उठाया, उठाकर अपने ऐसे हाथ में लिया और ऐसे दरवाजे के पास आ रहे थे, तो उसने भगवान को अपना स्तन पिलाने के लिए भगवान के मुंह में दिया स्तन। भगवान कृष्ण जैसे ही अपने ओट उनके स्तनों को लगाते हैं, तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण ने जैसे ही ओट लगाए उसका प्राण चूस लिया, लाइफ एयर, प्राण चूस लिया, और वो जोर से चिल्लाने लगे। वो क्या चिल्ला रहे थे, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अभी भगवान इसको पकड़ते हैं, भगवान कभी उसको छोड़ते नहीं। हाँ भगवान का एक गुण है, वो कभी किसी को छोड़ते नहीं जब एक बार पकड़ लेते हैं। ऐसे भगवान जिनको बहुत टेढ़े हैं, तो ऐसे पकड़ा उनको और वो चिल्लाने लगे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते माता हे पुतना देवी, जैसे आप देखो पुतना देवी को कहते हैं अभी अभी तो दूध का भोग लगाया तुमने, अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ तो भोग निकाल रही हो। कई बार होता है ना, हमें जब भूख लगती है एप्पल इस हाथ से रखते हैं और इस हाथ से निकाल देते भगवान के सामने से, भोग बड़ा तेजी से लगाते हैं। हाँ ऐसे भोग लगा देते तो 5 मिनट तो रखना चाहिए, 10 मिनट रखना चाहिए। तो वैसे ही उतना अभी अभी दूध पिला रही थी, अभी दो एक सेकंड भी नहीं हुआ, 1-2 सेकंड भी नहीं हुए हैं, तो भगवान को कह रहे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान कहते रुको रुको, भोग का भी पूरा टाइम नहीं हुआ है। तो ऐसे जब चिल्लाने लगे उसको पता चला कि ये सर्वसाधारण बालक नहीं है। वहां प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि पुतना के गोद में कृष्ण बालक थे बहुत छोटे से, उस समय भी वो भगवान है। और अर्जुन का जब सारथ्य कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में कर रहे हैं तभी भी वो क्या है, भगवान है। भगवान हमेशा भगवान बने रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, अच्युत। अच्युत मतलब किसी भी स्थिति में वो अपने पद से च्युत नहीं होते। तो ऐसे पुतना देवी चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे, तो भगवान ने सोचा आगे यही। फिर जैसे ही भगवान ने उसका प्राण चूसे तो उसने अपना मूल राक्षसी रूप प्रकट किया। ये वैसे ही है जैसे हम अपना जब अनर्थ निकलते हैं भक्ति में तो फिर बहुत कष्ट होता है, कभी लगता है कि भक्ति छोड़ देनी चाहिए। हाँ, बहुत सारी चीजें हमें तंग करती है, छह विकार तंग करते हैं, तो वो निकल रहे होते हैं जब बाहर जाते हैं तब ये तंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे भगवान ने जब उसको उसके प्राण चूस लिए थे तो वो चिल्लाने लगी, अपना मूल रूप राक्षसी रूप प्रकट किया। तो भगवान सोचते कि ये इतनी बड़ी हो रही है, अब ये इधर गिरेगी तो सारे ब्रज के घर विनाश कर देगी। उसको दौड़ाया, कहाँ दौड़ाया, गोकुल के बाहर बाहर दौड़ाया, और फिर उसने अपना मूल रूप जो प्रकट किया था इतना विशाल, जिसको शुक्रदेव को सर्व वर्णन करते भागवतम में, और वो गिर पड़ती है। ऐसी मानो बहुत बड़ा वृक्ष तूफान से गिर पड़ा, ऐसे शुक्रदेव को समय कहते हैं। और गिरे तो भगवान आनंदित थे, भगवान उसके शरीर में नाच रहे थे, नाच तो ले रहे थे बालक के आनंद ले रहे थे, उनको लगा फुटबॉल ग्राउंड है, खेल रहे थे। तो ये गोपिकाओं ने देखा, सबसे ज्यादा रो रही थी कौन, यशोदा माता। यशोदा का इतना प्रेम था, एक क्षण के लिए भी कृष्ण उनके आत्मन से ओझल नहीं हो सकते। तो ऐसे उतना जब गिरी तो ये गोपियां दौड़ पड़ी सारे, देखा ये तो पूरा इतना बड़ा शरीर मानो 10 मंजिल की इमारत हो, बहुत बड़ी इमारत में चढ़ना ऊपर कृष्ण है, अभी कैसे दे। तो बहुत सारी सीढ़ियां लेके आई गोपियां, एक एक को बांध बांध के लगा दी, गोपियां चढ़ गई दौड़ दौड़ के ऊपर, और देखा लगा कि कृष्ण को कुछ हुआ होगा, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, कृष्ण आनंद में थे। गोपियां पकड़ उठाकर लाती है कृष्ण को और माता यशोदा के गोद में देती है, और फिर जब लेके आती है गोद में देती तो वो समय हाँ, क्योंकि लग रहा था बहुत अमंगल है, तो मंगल करने के लिए, शुभ करने के लिए गाय का गोमूत्र गोबर आदि लगाते हैं, गाय का कुछ भगवान के पूरे शरीर में ऐसे पहुंचते हैं। तो जब ये गाय का सारा गोमूत्र गोबर और कुछ आदि का इस्तेमाल हो रहा था तो कृष्ण वहां मन में सोचने लगे, अरे हे गौ माता, मेरे लिए तुमने सब कुछ दे दिया, भगवान ने जीवन का लक्ष्य बना दिया। बच्चे होते ना, बनूंगा तो डॉक्टर बनूंगा, बनूंगा तो इंजीनियर बनूंगा, लेकिन पता नहीं कुछ और बन जाते हैं, बड़े बड़े के वजह बनते ही नहीं। तो वैसे ही लेकिन भगवान के साथ ऐसे नहीं, वहां कहते भगवान को ये जब लगाया जा रहा तो भगवान ने सोचा ये गाय ने सब कुछ मेरे लिए दे दिया, भगवान कहते बड़ा होकर कुछ बनूंगा तो गोपाल बनूंगा। क्या बनूंगा, गोपाल। अभी आप माता पिता बोलते हैं बच्चे गोपाल बनना है तुम्हें, बड़े होकर गाय संभालनी है, ऐसा कोई कहता है नहीं। जो सबसे बड़े त्रिभुवन के स्वामी हैं, भगवान हैं, वो अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाते हैं, गोपाल। ये कृष्ण की विशेषता है। तो इस प्रकार से भगवान उनको ये करते हैं, उनको बड़ा स्थान देते हैं। तो वहां पूतना ने भगवान को स्तनपान किया था तो भगवान कहते इसलिए मेरे साथ संबंध स्थापित किया है, ये न केना प्रकार है ना, तो इसलिए भगवान कहते इसको क्या स्थान दो, तो भगवान ने अपने माँ का स्थान दिया गोलोक वृंदावन में, धात्री। लेभे गतिम धात्री, हाँ कहते धात्री यशोदा के साथ जो कृष्ण की सेवा करने वाली है वो पूतना बनी, यशोदा के समान स्थान उनको प्रदान किया। देखा सारे विशेष रूप से ब्रह्मा ने सोचा, ब्रह्मा सोचते उसने अपना ब्राह्मण के सर में हाथ लगाया, एक सर में नहीं कितने सर में, चार, उन्होंने उनका शरीर घूमने लगे सारे। वो कहने लगे एक पूतना जैसी स्त्री आसुरिणी जो भगवान के साथ इतनी ईर्ष्या और द्वेष करती है, हम भगवान को जहर पिलाना चाह रहे थे, मारना चाह रहे थे, उसको इतना बड़ा स्थान दे दिया माँ का स्थान। तो भगवान ब्रह्मा सोचते हैं फिर जो ब्रज के लोग हैं, जो ब्रज की स्त्रियां हैं, गोप हैं, सखागण हैं, जो भगवान को इतनी सेवा कर रहे हैं, गाय है जो भगवान को दुग्धपान करा रही है, भगवान कृष्ण क्या उनको प्रदान करेंगे, कौन सा स्थान देंगे। ब्रह्मा कहते हैं कृष्ण के पास उनको देने के लिए कुछ और नहीं है। आपने आपको देंगे कृष्ण तभी भी इस ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। तो सोचो कितना प्रेम होगा ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति। यदि ये ऐसे उतना को इतना बड़ा दर्जा दे सकते हैं तो जो प्रेम भक्ति श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है उसको भगवान कितना बड़ा स्थान देंगे। तो इस प्रकार से कहा गया है कि भगवान माता का स्थान उतना को दे दिया और जिसके द्वारा हमें ये प्रेरित कर रहे हैं भगवान, ये भगवान विज्ञापन कर रहे हैं, एडवर्टाइज। हम जैसे आजकल कुछ सामान बेचना है तो विज्ञापन करो, बेच जाता है। इसलिए करके कोई एडवर्टाइजर 12 बार देखते हो तो आपको लगता है कि उस वस्तु के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझे कल खरीदनी ही खरीदनी है, ऐसे रहता है। ये विज्ञापन का प्रभाव है हमारी चेतना पर। वैसे ही भगवान ने भागवतों में पहला एडवर्टाइजमेंट कर दिया किसका, किस कौन एडवर्टाइजमेंट आप लेते हो ना, किसी को लेते हो ना, क्या कहते हैं किसी हीरोज को, स्पोर्ट्स स्टार को। वैसे भगवान ने किसको ले लिया, पोतना को ले लिया और पोतना के माध्यम से दिखा दिया कि मेरे साथ संबंध स्थापित करने से मैं अपना बनाऊंगा, अपने धाम में स्थान प्रदान करूंगा। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जिन चरणों का स्मरण भक्त लोग अपने हृदय में करते हैं या जिन चरणों की वंदना ब्रह्मा आदि देवता पर करते हैं, वो चरण पुतना के शरीर पर खेल रहे थे, उनका स्पर्श हो रहा था। देखो कितनी श्रेष्ठ पुतना। इसलिए पुतना जब शरीर छोड़ा, पुतना का वध हुआ, तो ब्रजवासियों ने उनको ऐसे काट काट के जलाया और उसके शरीर से सुगंध आ रहे थे। क्या आ रहे थे? चंदन और कस्तूरी जैसी सुगंधित हो गया था उसका शरीर। ये वैसे ही है कि हम भक्ति में आते हैं तो बहुत नाना प्रकार के हमारे हृदय में अनर्थक आदि होते हैं, लेकिन जब भगवान में भक्ति करते हैं, भगवान के संपर्क में बने रहते हैं तो हम भी आकर्षक लगने लगते हैं, है ना। इसलिए वास्तव में भगवान के संपर्क में आना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी कारण से शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे पूतना व्रत की लीला को जो श्रद्धा के साथ सुनता है तो क्या होगा, भगवान गोविंद के प्रति उसका आकर्षण तीव्र हो जाएगा। इसलिए कृष्ण बुक पढ़ते रहना चाहिए और पढ़कर कोई एक लीला हम पढ़ते हैं तो उसको स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए। सीक्वेंस भगवान ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके साथ क्या शिक्षा दी गई है। भाई से जब मन को दौड़ाएंगे तो मन उसमें डूबेगा और फिर मन और अधिक उसमें अमृत अनुभव करेगा। नहीं तो मन स्वाभाविक रूप से भौतिक विषयों के प्रति भागता है, क्योंकि हजारों जन्मों से ये मन का संग किससे है, भौतिक विषयों से। इसलिए कृष्ण बुक अमेजिंग वस्तु है कि जिसको हमें पढ़ना चाहिए, रोज प्रयास करना चाहिए और जो भी पढ़ते हैं उसको एक सीरियल वाइज सोचना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मूवी देखते हैं, मूवी देखने के आने के बाद पूरा एज इट इज आपको पूरा स्टोरी सुनाएंगे यथावत, और वही उनको बोलो कृष्ण लीला पढ़ के सुनाओ, उनसे नहीं सुनाई जा सकती। तो वैसे ही है, हमें भगवान कृष्ण की कार्यकलापों के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। जब मौका मिले किसी को पकड़ो और उसको सुनाओ, यही जन्माष्टमी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथाश्रम भागवतम की पूतना व्रत की, कृष्ण कथामृत की, श्रील प्रभुपाद की, सबके लिए प्रसाद है।